ये तो होगी विधि, ठीक है ना, ये ना करो, ये हो गया निषेध, ये तो हो गया प्रेरक वचन विधि है, केड़ा ऐसा पुरुष का प्रेरक वचन विधि है, ता वचन में श्रद्धा को विश्वास कहे हैं और अंतःकरण की कामना रूप रजोगुण की वृत्ति इच्छा कहे। इच्छा किनू कहते हैं, इच्छा किनू कहते हैं, ठीक से सुन लो यदि परिभाषा, इच्छा की परिभाषा है अंतःकरण की कामना रूप रजोगुण वृत्ति, कामना रूप जो रजोगुण वृत्ति है उनकी कहेंगे इच्छा, ठीक है। ध्यान के हुए थे तीन है, ध्यान के हेतु जे तीन है, ज्ञान के नहीं, ये ध्यान के तीन हेतु है, केड़े केड़े, इच्छा विधि विश्वास और इच्छा, केड़े केड़े हो गए, इच्छा, ये तीन हो गए, ठीक है ना। ध्यान के हेतु जे तीन है, ज्ञान के नहीं, ध्यान हठ से होवे है, ज्ञान में हठ की अपेक्षा नहीं, ज्ञान हठ से नहीं होगा, ज्ञान तो वस्तु का ही होगा, जैसी वस्तु है, वृत्ति नु हट करके रोकना है, ठीक है ना। हाँ, काहे ते निरंतर ध्येय कार चित्त की वृत्ति को ध्यान कहे हैं, ध्यान किनु कहते हैं, ये थोड़ी आप अखा मीट के बैठे ध्यान कर रहे हैं, मन घूम रहा है कहीं और, वो नहीं, ध्येय के अनुसार बार बार वृत्ति को ध्याकार बनाना, जिदा ध्यान करने बैठे जे ध्याता ध्येय रूप हो जब ही सिद्धू उपासना मानो, तभी तभी सिद्ध उपासना होगी ना। जैसे गुरु गुरु दशम भगवान कहते हैं ना, एह विद कर्त तपस्या भ्यो द्वेत एक रूप हो गयो, है ना दशम ग्रंथ, एह विद कर्त तपस्या भ्यो, मैं इस तरीके ना तपस्या कीती द्वेत एक रूप हो गयो, मैं दो सी, मैं अलग सी, ईश्वर अलग सी, मैं उदय स्वरूप हो गया, कैसे हो गए, यही चिंतन से मैं ब्रह्म हूं तो फिर ब्रह्मी रूप हो गए, ठीक है ना। तहां वृत्ति में विक्षेप होवे तो हट से वृत्ति की स्थिति करे, अगर वृत्ति में चंचलता है, वृत्ति बाहर मन भाग रहा है, तो उन्हें हट से वृत्ति नु रोके, ज्ञान रूप अंतःकरण की वृत्ति से तत्काल आवरण भंग हुए थे, वृत्ति की स्थिति का उपयोग नहीं, जानते हट की अपेक्षा नहीं, अंदर एक बार अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्माकार वृत्ति बनी, आत्मा का आवरण भंग हो गया, हट की किसे जरूरत रहेगी, हट की जरूरत ही नहीं है, वृत्ति नु रोकने वास्ते हट है, आत्मज्ञान वास्ते हट नहीं। बैकुंठवासी चतुर्भुज विष्णु के ध्यान की न्यायी, मैं ब्रह्म हूं जय ध्यान भी देह के अनुसार है, प्रतीक नहीं, देख लो, जैसे शालिग्राम ता ध्यान की कर रहे सी विष्णु रूप, तो विष्णु का स्वरूप की है चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला लक्ष्मी सहित, तो वो जड़ा शालिग्राम है वो कैसे है, पत्थर, आंदा वो तो पत्थर है, पर है जड़ा देह है ना, जैसा विष्णु है ध्यान उदा ही कर रहा, वो तो प्रतीक ध्यान है, पर ये प्रतीक नहीं है मैं ब्रह्म हूं, ये भी आंदे जैसा ब्रह्म है ऐसा ध्यान हो रहा है, ठीक है ना। देखो ना, मैं ब्रह्म हूं जय ध्यान भी ध्येय के अनुसार है, प्रतीक नहीं, जैसे वस्तु है ऐसा ही ध्यान कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो ना, मैं ब्रह्म हूं जय ध्यान भी ध्येय के अनुसार है, प्रतीक नहीं, जैसे वस्तु है ऐसा ही ध्यान कर रहा हूं मैं ब्रह्म हूं, ठीक है ना। परंतु जह अहंग्रे ध्यान है, ये है अहंग्रे उपासना, अगर ब्रह्म लोक की जरूरत होवे तो यह चिंतन करो, आगे दसणगे ब्रह्म लोक दे तानू पचाउण वास्ते जेड़ा उपासक ये करद्या करद्या उन्हू इत्थे ज्ञान नहीं होया, मन लो ये चिंतन कर रहा मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं, यह चिंतन कर रहा है तो ज्ञान नहीं होया, शरीर पूरा हो गया तो फिर वो की बनया, वह अर्जुन ने यही प्रश्न किया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण नूं यह प्रश्न किया, तुसीं यह दसो भी जिहड़ा तुहाडे सिमरन च लगा है, ठीक है, उन्हें संसार दे सुख ते पहले त्याग दिते ते तां ही ते इस पासे आएगा, संसार दे सुख ते त्याग दिते उन्हें पहले, ठीक है, अगर वह तुहाडे सिमरन च लगा, परमात्मा दे सिमरन च लगा, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि लगा है, तो उन्हूं परमात्मा का साक्षात्कार आत्म ज्ञान नहीं होया, उहदा शरीर पूरा हो गया, ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਉਹ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੇ। ਆਂਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਥਵਾ ਜੋਗੀ ਨਾਮ ਕੁਲੇ ਭਵਤੀ ਧੀਮਤਾਮ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀਆਂ ਸਭ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੂਰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਗਾਓ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਡਏ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗਾਂਗੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮਰਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅੰਗਰੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਕਾ ਆਪਣੇ ਸੇ ਅਭੇਦ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਨ, ਅੰਗਰੇ ਧਿਆਨ ਕਹੀਏ, ਦੇਖੋ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਕਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਭੇਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵੋ ਹੂੰ, ਇਹ ਅੰਗਰੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਖੁਦਾਵੰਦ ਡਰਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦਾ ਕੰਬਿਆ ਕਿੰਗਰਾ ਜਦ ਆਸ਼ਕ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਵੀ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕੋ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵੇਦ ਕੀ ਆਗਿਆ ਰੂਪ ਵਿਧੀ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਠ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਸੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕੋ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਕੋ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਕਾ? ਆਤਮਾ ਕਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਕਾ। ਔਰ ਵੇਦ ਕੀ ਆਗਿਆ ਰੂਪ ਵਿਧੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਠ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੂੰ, ਜਾਂ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰੂਪ ਅੰਗਰੇ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਵ ਉਪਾਸਨਾ। ਪ੍ਰਣਵ ਮੈਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਓਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਆ ਊ ਮਾਂ। ਅਬ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਮ ਜੋ ਹੈ ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਆ ਊ ਮਾਂ, ਅਕਾਰਾ ਵਾਸੂਦੇਵ, ਅਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵਾਸੂਦੇਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਤਿੰਨ ਅਕਾਰ ਦੇ ਓਮਕਾਰ ਓਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੇ, ਅਕਾਰ ਉਕਾਰ ਮਕਾਰ ਤਿੰਨ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਰੀਤੀ ਸੇ ਅਹੰਗਰੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਹੇ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਅਹੰਗਰੇ ਪ੍ਰਣਵ ਸਰੂਪ ਕੋ ਕਹੋ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਰ ਸੁਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਧਿਆਨ ਅਹੰਗਰੇ ਧਿਆਨ ਜੋ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਵ ਮੈਨੇ ਓਮ ਕਾ, ਓਮ ਕਾ ਅਹੰਗਰੇ ਧਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਕਹੋ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਰ ਸੁਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੁਰੇਸ਼ਰਾਚਾਰਿਆ ਜੋ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਹੰਗਰੇ ਧਿਆਨ, ਕਿਸਕਾ? ਓਮ ਕਾ ਅਹੰਗਰੇ ਧਿਆਨ ਬਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਰ ਪ੍ਰਣਵ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮ ਰੂਪ ਸੁ ਜੂ ਅਨੁਲਵ ਨਿਜ ਮਤੀ ਗਤੀ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਸ਼ਰ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ਰ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ? ਅਕਸ਼ਰ ਛਰ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ, ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਸਕਾ ਨਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਣਵ ਚਾਹੇ ਕਹੋ ਚਾਹੇ ਓਮ ਕਹੋ, ਅਕਸ਼ਰ ਪ੍ਰਣਵ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮ ਰੂਪ ਸੁ, ਜੋ ਪ੍ਰਣਵ ਅਕਸ਼ਰ ਓਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਮਮ ਹੀ ਹੈ, ਮਮ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਰ ਪ੍ਰਣਵ ਬ੍ਰਹਮ ਮਮ ਰੂਪ ਸੁ, मम मैंने मेरा रूप। हाँ, अक्षर प्रणव ब्रह्म, प्रणव जो अक्षर है वो ब्रह्म है, मम रूप सु वो मेरा ही स्वरूप है, ठीक है ना। जो अनुलव निज मति गति धार, ऐसे निरंतर अपने अंताकरण की जो वृत्ति है क्षण मात्र अंतराय से रहत निज मति में गति में वृत्ति की स्थिति धारण कर, ठीक है ना। ध्यान समान आन नहीं जाके पंचीकरण प्रकार विचार, अंदे ऐदे समान ध्यान हो रुको है ही नहीं, ठीक है। ध्यान समान आन नहीं जाके पंचीकरण प्रकार विचार, इसलिए पंचीकरण जेड़ा प्रकार है लय चिंतन उन भी नाल नाल विचार कर। जो कह जो जह कर तू उपासना सो मुनि तुरंत नसे संसार अपार। जेड़ा मुनि, मुनि मैंने मनन करने वाले नु मुनि कहिंदे आ, जेड़ा मनन नहीं करदा ओदा मुनि नाम नहीं हो सकदा, ठीक है ना। जो जह कर तू उपासना सो मुनि, जो ऐसी उपासना करदा है अहंग्रे उपासना किसकी, प्रणव की, जहां देह प्रकार देह जो स्वरूप है जिसका जिसको आप इष्ट देव मान रहे हैं ओदा जो अहंग्रे ध्यान करो, जैसे गुरु नानक साहब है, गुरु गोविंद साहब, गुरु भगवान विष्णु है, भगवान शंकर, कोई भी होवे जेड़ा ताड़ा इष्ट देव है वो तुसी जानो। अगर ध्यान करना है सर्वश्रेष्ठ तो ऐसा ध्यान करो वो मेरा ही स्वरूप है, इनू कहिंदे अहंग्रे ध्यान। जो जह कर तो उपासना सो मुनि, जो ऐसी उपासना करता है सोई मुनि है, तुरंत नसे संसार अपार। ये अपार पारावार से रहित जो संसार है तुरंत मैंने चटपट उसका नष्ट हो जाएगा। हे शिष्य प्रणव स्वरूप कहिए ओंकार स्वरूप का अहंग्रे ध्यान मांडुक प्रश देखो, ये जड़ा उपनिषद है ना मांडुक, इसने सानू संस्कृत विच प्रवृत्त किया। साढ़े गुरु जी रोज कहते होंगे तू भी हिंदी के ग्रंथ पढ़ पढ़ के करेगा करेगा, संस्कृत नहीं पढ़ता तू तो। मैं महाराज जी उन्होंने भी तो नीचे हिंदी दिती होंगी है तो अर्थ का पता ही चल जाता, तो फिर कहे तो जे उस कित नहीं दिती हो ऐसा ग्रंथ तेरा हाथ लगे फिर, तो फिर तो मैं चुप हो गया। फिर मैं ये मौका मिले यह ग्रंथ पढ़न का मांडुक उपनिषद मांडुकारिका। ये तीन टीके हैं, एक दे उन्होंने गुरु जी ने किया गौड़पादाचार्य जी ने, वह फिर टीका किया भगवान शंकराचार्य जी ने, वो ते फिर टीका होया आनंदगिरी, आनंदगिरी ते गोविंद पादचार्य दे एक टिप्पणी भी है। इतने टीके है इस ग्रंथ एक ग्रंथ एक ही पुस्तक दे विच। ते जदों मैं ये पढ़ने लगा फिर मैं गुरु जी की गल याद आई कि वाकया ये संस्कृत च है साढ़े पल्ले कुछ नहीं पै रहा। फिर मैं दस्या भी किसी नहीं चुप करके, फिर मैं काश चलिया। हाँ जी, मांडुक प्रश्न मांडुक और प्रश्नोपनिषद, मांडुक उपनिषद मांडुकारिका और प्रश्नोपनिषद आदि के श्रुति के अनुसार सुरेश्वराचार्य ने कहया है सो तू कर, ताका संक्षेप ते प्रकार जय है प्रणव अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, ठीक है। प्रणव माने ओम अक्षर, ओम अक्षर ब्रह्म स्वरूप है। सो प्रणव स्वरूप ब्रह्म मैं हूं, जहां रीति से अनुलव कहिए क्षण मात्र अंतराय रहित निज मति की गति कहिए वृत्ति धारण कहिए स्थित कर, जहां के समान आन ध्यान नहीं है और जहां ध्यान का प्रकार कहिए विशेष रीति से सुरेश्वरकृत पंचीकरण नाम ग्रंथ में विचार लिखिया, ठीक है ना। अंतराय मैंने फर्क से रहते विविधान ना आए विच, लगातार जिन्हू कहते निरंतर निर्गुण और किन्ना कर रहा जी हाँ जी, निर्गुण और सगुण प्राणव की उपासना का फल सहित कथन। यद्यपि नहीं चलो कोई देखो, निर्गुण और सरगुण दो दो प्रकार का ब्रह्म है ना, ए निर्गुण और सरगुण। आपा निर्गुण तो जानते नहीं, ते गुरबाणी च की क्या है निर्गुण आप, सानू ना निर्गुण दा पता ना सरगुण दा, पढ़ी जाने रोज निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही, यही करते हैं ना। वो कह रहे निर्गुण भी उही है जेड़ा सरगुण है, भी जेड़ा निर्गुण है आप नारायण कला तार जग में परवर्यो निरंकार आकार जोत जग। निरंकार जिदा कोई आकार ही नहीं, उसने की किया आकार ग्रहण किया, वो सरगुण हो गया। निरंकार आकार जिसका निरंकार जिदा कोई आकार नहीं, उसने आकार आकार ग्रहण कर लिया, तो क्या हो गया? निर्गुण तो सरगुण हो गया। ऐसे अर्थ लगते बाणी दे के पढ़ पढ़ के बस। आप नारायण, वो कहते भगवान आप कला धार, कला धार करके धारण करके जग में परवर जग में विचरण कर रहा है। कैसे? वो तो निर्गुण है, अंदे वो निर्गुण तो है पर वो सरगुण भी हो जाता। वो ही हाँ एक रूप है बस। निर्गुण और सरगुण की उपासना का फल सहित कथन, और निर्गुण की उपासना का की फल होवे और सरगुण की उपासना का की फल होवेगा। यद्यपि प्रण उपासना बहुत उपनिषद में है, तथापि मांडू को उपनिषद में विशेष है। ताके व्याख्यान में भाष्यकार और आनंद गिरी ने ताकि रीति स्पष्ट लिखी है, सोई रीति वार्तिककार ने पंचीकरण में लिखी है। तथापि तिन ग्रंथन के विचारन में जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं है, तिनके अर्थ प्रणव उपासना रीति से हम लिखे हैं। देखो उनकी जड़ी संस्कृत नहीं पढ़ सकते, उन वास्ते कह रहे हैं। दो प्रकार से प्रणव का चिंतन उपनिषद में कहा, एक तो परब्रह्म रूप ते प्रणव का चिंतन कहा और दूसरा अपरब्रह्म रूप ते कहा है। परब्रह्म और अपरब्रह्म इदा की अर्थ होया, निर्गुण ब्रह्म को परब्रह्म कहे हैं और सरगुण ब्रह्म को अपरब्रह्म कहे हैं, ठीक है ना। परब्रह्म रूप ते प्रणव का चिंतन करे सो मोक्षु प्राप्त होवे है, और अपरब्रह्म रूप ते प्रणव का चिंतन करे सो ब्रह्मलोक को प्राप्त होवे है, वो तो इत्थे मुक्त हो जाएगा, और जड़ा सरगुण की करेगा वो ब्रह्मलोक जाके हो जाएगा, ठीक है ना। सो निर्गुण सरगुण भेद से प्रणव उपासना दो प्रकार की है। तामे निर्गुण रूप प्रणव उपासना उपासना के प्रकार का प्रारंभ, निर्गुण की रीति लिखे हैं सरगुण की नहीं। देखो वो कह रहे हैं असि निर्गुण की रीति तनु दस रहे हैं सरगुण की नहीं, क्यों नहीं दस रहे? काहे ते जाकु ब्रह्मलोक की कामना होवे ताकू निर्गुण उपासना ते भी कामना रूप प्रतिबद्ध ते ज्ञान द्वारा तत्काल मोक्ष होवे नहीं, किंतु ब्रह्मलोक की ही प्राप्ति होवे है। वो कह रहे निर्गुण की उपासना इस वास्ते दस रहे हैं जिन्हों ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, किसी गल करके ज्ञान नहीं हो गया उन ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा, ते सरगुण ने भी ब्रह्मलोक देना है। जदों जदों सरगुण ने भी ब्रह्मलोक देना है ते एदे ना भी ब्रह्मलोक मिल सकता है। जे ताड़ी कोई इच्छा कामना बाकी है तो मुक्त नहीं हो गए ब्रह्मलोक मिल जाएगा, तो फिर ओदी लिखने की जरूरत है। इच दोनों मौके मिलने, इच दोनों हट च लड्डू है ना। तहां भाई यही तो आत्मा निर्गुणी तो है। ब्रह्म कैसा है? निर्गुण, कोई केड़ा गुण दसो ना, कोई आकार नहीं है, कोई संबंध नहीं किसी ना कोई स्पर्श नहीं है, तो निर्गुण तो है ही हो। मैं ब्रह्म हूं तो निर्गुणी तो है। ब्रह्म का दसो रूप कैसा है, कोई आकार कैसा होता, कोई स्वरूप है ओदा? स्वरूप नहीं है तो क्या हुआ फिर? निर्गुण। तहां हिरण गर्भ के समान भोग को भोग के ज्ञान होवे तब मोक्ष होवे है। हिरण गर्भ में ब्रह्मा जी, ता ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी के समान जितने ऐश्वर है सारे भोग करके जो ब्रह्मा जी की आजू पूरी होगी उदे नाल ही मुक्त हो जाए। तो फिर एक कुछ बड़ा है, फिर दो की करने आप सरगुण का क्या करना, फिर निर्गुणी चलने दो। जाकू ब्रह्मलोक की कामना नहीं होवे ताकू इस लोक में ही ज्ञान हो के मोक्ष होवे है। जिन्हों ब्रह्मलोक की कामना नहीं है उन्हें तो इतो ही ज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। इस रीति से सरगुण उपासना का फल भी निर्गुण उपासना के अंतर्भूत है। जानते निर्गुण उपासना का प्रकार कहे हैं, अंतर्भूत मैंने उदे बिची जो कुछ कार्य कारण कार्य वस्तु है सो ओंकार रूप है। जानते सर्व रूप ओंकार है। सर्व पदार्थ में नाम और रूप दो भाग है, जितने पदार्थ है उदे विच दो भाग कर लो, नाम और रूप। एदा ए पुस्तक दा एदा हो गया, ए नाम पुस्तक, एदा रूप, ए आकार, एदा रूप हो गया। ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਘੜਾ ਪਿਆ, ਲੱਖ ਘੜੇ ਪਏ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਆਪਕ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੋਈ? ਨਾਮ ਕੇ ਰੂਪ ਵਿਆਪਕ, ਵਿਆਪਕ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘੜੇ ਆਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨੇ? ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਕਾਰ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਹੀ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਰਵ ਪਦਾਰਥ ਮੇਂ ਨਾਮ ਔਰ ਰੂਪ ਦੋ ਭਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਪ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਭਾਗ ਮੇਂ ਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਹੀ ਰੂਪ ਭਾਗ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਲੈ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਔਰ ਸਰਗੁਣ ਕੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾ ਫਲ ਸਹਿਤ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨਿਰਗੁਣ ਔਰ ਸਰਗੁਣ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਸਰਗੁਣ ਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਰਗੁਣ ਕੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨੇ, ਉਪਾਸਕ ਜੋ ਫਲ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰ ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸਨਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਨਿਰਗੁਣ ਕਾ ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਾਤ। ਅਬ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਕਾਰਯ ਵਸਤੂ ਹੈ ਸੋ ਓਂਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਵ ਰੂਪ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਂਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਓਂਕਾਰ ਮੈਨੇ ਉਹ ਓਂਕਾਰ, ਓਂਕਾਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਾਰਯ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਪੰਚ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮੇਂ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਕਾਰਯ ਵਸਤੂ ਹੈ ਸੋ ਓਂਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਵ ਰੂਪ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਵ ਪਦਾਰਥ ਮੇਂ ਨਾਮ ਔਰ ਰੂਪ ਦੋ ਭਾਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਸੇ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਇੱਕ ਰੂਪ। ਰੂਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ? ਆਕਾਰ, ਜੈਸਾ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਰੂਪ। ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਇਤਨਾ ਇਧਰ ਸੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਐਸੇ ਐਸਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਾਰ, ਜਾਂ ਰੂਪ ਕਹੋ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਕਹੋ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਮਾਇਕ। ਇਹ ਨਾਮ ਔਰ ਰੂਪ ਜਾਂ ਆਕਾਰ, ਇਹ ਦੋ ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮੇਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਓਗੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਆਕਾਰ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਰੂਪ। ਅਸਤੀ ਭਾਤੀ ਪ੍ਰਿਯ ਸਿੰਧੂ ਮੇਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜੰਜਾਲ, ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਸਤੀ ਭਾਤੀ ਪ੍ਰਿਯ ਸਿੰਧੂ ਮੇਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜੰਜਾਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸਤੀ ਭਾਤੀ ਪ੍ਰਿਯ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਤੀ ਮੈਣੇ ਹੈ, ਭਾਤੀ ਮੈਣੇ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਯ ਮੈਣੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਬ੍ਰਹਮ। ਤੋ ਉਹ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜਾਲ ਕਿਆ ਹੈ? ਨਾਮ ਰੂਪ ਜੰਜਾਲ, ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਇਹੀ ਜੰਜਾਲ ਹੈ। ਲੱਖ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਕੋ ਹੋ ਤਤਕਾਲ ਨਿਹਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲ ਉਸੀ ਕਸ਼ਣ ਤਤ ਕਸ਼ਣ ਮੇਂ ਆਨੰਦਮੇ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਫਿਰ? ਜੰਜਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਰੂਪ ਦਾ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜਾਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੋ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਸਰਵ ਪਦਾਰਥ ਮੇਂ ਨਾਮ ਔਰ ਰੂਪ ਦੋ ਭਾਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਰੂਪ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਭਾਗ ਸੇ ਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾ ਮਨੇ ਅਲੱਗ, ਰੂਪ ਜੋ ਰੂਪ ਭਾਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਹੀ ਰੂਪ ਭਾਗ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਕਾ ਰੂਪ ਕਹੀਏ ਆਕਾਰ, ਤਾਂ ਕਾ ਨਾਮ ਸੇ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਪ ਆਕਾਰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ, ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੇ ਆਪ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਆਗਣੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਬ ਤੱਕ ਵਸਤੂ ਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਬ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਆ ਹੋਆ ਫਿਰ? ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਿਰੂਪਣ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਆਕਾਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਾਮ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲੀ ਆਕਾਰ ਦੇਖ ਕਰ ਆਪ ਉਸਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਵਿਵਹਾਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਰੂਪ ਮੇਂ? ਨਾਮ। ठीक है ना। और अकार के नाश हुए भी नाम शेष रहे हैं। अकार मान लो नष्ट हो गया तो नाम तो फिर भी रहेगा। कड़ा नष्ट हो गया हुण साडे जेडे बजुर्ग सी साडे वड्डे वडेरे वो नहीं है, नाम तो है ना, तो फिर व्यापक वस्तु केड़ी हुई? नाम हुई ना। भगवान तो नहीं है अब, सरगुण रूप च निर्गुण रूप सानू साडे सामने प्रत्यक्ष है, नाम तो है ना। अगर कोई आप उधर दूर से आदमी खड़ा है उधर को मुख करके, उसका मुख उधर को आप आवाज देंगे उसका नाम लेकर के, तो इधर देखेगा। उन्हें अपने उन्मुख करने के लिए असि उसके नाम का उच्चारण करांगे। उन्मुख माने अपनी तरफ मुख करने वास्ते, तो फिर विशेष क्या होगा रूप में? नाम, ठीक है ना। नाम शेष रहे, जैसे घट का नाश हुए थे मृत का शेष रहे है, जैसे घड़ा टूट गया तो घड़े विच सार वस्तु केड़ी है? मिट्टी, वो शेष रहेगी। तहां घट मृतका से पृथक वस्तु नहीं, मृतका स्वरूप है। तैसे अकार का नाश हुए थे मृतका की न्यायी शेष रहे जो नाम, तां से अकार पृथक नहीं, नाम स्वरूप ही अकार है, ठीक है। किंवा जैसे घट शराबादिक में मृतका, शराबादी सुन लिया ना, घट शराबादी शराब छोटे छोटे कसोरे नहीं होंगे तुसी पंगतां दे विच देखिया है, इतने इतने कुछ जिन्हें पानी दे कुछ दिन दे खीर खार जो भी पंगत दे विच उन्हों कुछ कहिंदे शराब, घट शराब, ठीक है ना। किंबा जैसे घट शराब आदि मृत का अनुगत है, अनुगत मैंने ओत पोत, घड़े दे विच मिट्टी कैसे है? ओत पोत ही है ना, अनुगत मैंने ओत पोत। और घट शराब आदि परस्पर व्यभिचारी है, मिट्टी तो उन्होंने दोनों ओत पोत है, और कड़ा और कसोरा अलग अलग है, आकार अलग अलग है, मिट्टी उत्पोत है उन्होंने। जाते घट शराब आदि मिथ्या है, तीन में अनुगत मृत का सत्य है। तैसे घट आकार अनेक है, तीन सब का घट जे दो अक्षर का नाम एक है। हजार लख कड़ा पिया हुए सारे दे आकार अलग अलग होंगे, ते नाम कड़ा, कड़ा कहना सारे पदार्थों का बोध हो जाएगा। छांदोग उपनिषद में एक कथा है, कथा तो नहीं कह सकते, इतिहास, उस कह रहा उदालक मुनि हो एक, वो अपने पुत्र श्वेत केतु नू उपदेश कर रहे है। वो कह रहे ऐसी वस्तु तू गुरु से सीख के आया जिदा एक ने जानने सारे का ज्ञान हो जाए, कहता ऐसी इतनी मेरे गुरु ने दसी, कहता फिर जा फिर अपने गुरु से पूछ के आ, कहता ये गुरु ने जो पास होंगी विद्या है तो मैनू दे दें दे। ते तुसी प्रश्न किया हुण तुसी उत्तर दो मैनू। वो आके पिता दे सराहने बैठ गया सी, ते मैं बड़ा पढ़ के आ गया, ते जदों पिता ने प्रश्न की, पिता ने सोचा ये ते मूर्ख बन के आ गया पहले नाल उदालक जी ने श्वेत केतु नू, ते जदों फिर उन्हें प्रश्न किया भी तुसी हुण मैनू दसो, फिर उन्हें दसिया जैसे लोहे दे जितने बर्तन संदर दिखाई दिंदे हन उन्हां दे विच सत क्या है? लोहा आकार सत नहीं है। ऐसे मृतिका के जितने बर्तन भांडे तुसी देखोगे उन्होंने विच सत वस्तु केड़ी है? सार वस्तु मिट्टी। ऐसे स्वर्ण, ऐसे नौ बार उपदेश किया उन्होंने उदालक मुनि ने अपने पुत्र श्वेत केतु नाम, नौ बार उपदेश किया है। कह रहे नाम और रूप ये मिथ्या है। नाम मैंने जैसे घड़ा है उदा आकार और नाम ये तो दोनों मिथ्या हो गए, तो सत क्या होगा उन्हें? मिट्टी, मिट्टी का थोड़ी नाश हो जाएगा। ऐसे ही ये सब जितने शरीर हैं ये कैसे हैं? पंच भौतिक। ये शरीर इन्हां दे आकार और इन्हां दे नाम सब मिथ्या है। हुण है और आत्मा सब दे विच अनुगत रूप दे एक है। जैसे अलग मान लो एक माला है फुलां दी, ठीक है, एक माला है, माला दे विच धागा फुल, ये सब फुल मान लो जितने पृथ्वी ते जीव है, जीव जंतु पशु पतंग कीट पतंग जितने भी है सब फूल, और आत्मा सूत्र खिचिया सूत तो आए थाए, कैसे शब्द है फिरती बहुविध धाए, खिचिया सूत तो आए थाए। ये माला जिहड़ी है कोई मनका इधर नूं दौड़ जांदा, कोई फुल ऐनूं दौड़ जांदा, कोई ऐनूं दौड़ जांदा, तो जदों उहदे चों माला धागा खिचदे आ सब ठंडे हो जांदे। इन्हां दे विच सत की होया फिर? आत्मा जो सत है, बाकी नाम और रूप, एदा नाम और ए रूप आकार ये नहीं रहने वाला, और आत्मा वो नष्ट होने वाली नहीं है बस, ठीक है ना। उसने नौ बार उपदेश किया सी ऐसे ही, तो सार वस्तु केड़ी होगी, नाम रूप सार नहीं है, कसोरा कड़ा और कड़ा, कड़ा नाम और उदा आकार ये मिथ्या है, और मृत का जो विच है वो सत्य है। ऐसे ही ये शरीर मिथ्या है, इदे विच जो आत्मा है वो सत्य, इसके शरीर का नाम और इस शरीर का आकार। हाँ जी, अपना आत्मा नाम है अपने आप का, अपने स्वरूप का नाम है आत्मा, किसी आत्मा साढ़े तो कोई अलग वस्तु है ऐसा नहीं है। ऐसा मानोगे तो फिर उन्होंने खोजने वास्ते कैसे जाओगे, है ना। सो आकार परस्पर विचारी और सर्व घट के अकारण में नाम एक अनुगत है, जानते मिथ्या आकार सत्य नाम से पृथक नहीं। इस रीति से सर्व पदार्थन के आकार अपने अपने नाम से भिन्न नहीं, किंतु नाम स्वरूप ही आकार है। सो सारे नाम ओंकार से भिन्न नहीं किंतु